जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
पहला सवाल ये है कि ये वाजिब और मुतलिक लफ्ज़ है एब्सोल्यूट,
जी
इन दोनों की वजाहत कर दें।
वाजिब, आपने देखा होगा कि भाई अब मुझे इतना मैंने काम कर लिया, अब मुझ पे खाना वाजिब हो गया, क्या मतलब होता है? हम ये आम बोलचाल में कहते हैं ना कि भाई अब मुझ पे गुस्ल वाजिब हो गया, क्या मतलब है? यहाँ पे वाजिब का आप क्या मतलब ले रहे हैं? आप कहते हैं भाई मुझे प्यास लगी है, अब मुझ पे पानी पीना वाजिब हो गया है, तुमने मुझ पे ये एहसान किया है, या तुमने बदतमीजी की है, अब मुझे तुम पे चांटा मारना वाजिब हो गया है, क्या मतलब है इनका? शाबाश, बिल्कुल सही कहा। यानी जब कोई चीज लागू हो जाए, अब अल्लाह की फिक्र हर मखलूक पे लागू होती है या नहीं? अल्लाह रब्बे करीम ने जो भी प्रोग्राम वजा किया वो मखलूक के लिए वाजिब है या नहीं? तो वाजे हो गया कि वाजिब का क्या मतलब हुआ, वो चीज जो आपके लिए मेरे लिए लाजिम हो जाए, जिसको करना जरूरी हो गया वो वाजिब कहला रहा है, हाँ या नहीं? अब यहां पे जुमला देखें क्या है, अव्वल जाते बारी ताला है, यानी सबसे पहले अल्लाह की जात है, और बारी ताला का जहन इल्म वाजिब है, यानी कि वो जो अल्लाह ने सोचा वो सब वाजिब हो गया, और उसका इल्म जो है वही अल्लाह का जहन है। अब आ जाए मुतलक पे। मुतलक अंग्रेजी में एक लफ्ज है एब्सोल्यूट, यानी जिसमें किसी और चीज की आमेजश ना हो, किसी और चीज की आमेजश ना हो। मसलन आप इसमें एक जुमला पढ़ेंगे किताब में, नस्मा मुतलक, फिर नस्मा मुफरद, फिर नस्मा मुरक्कब। फरिश्ते जो है ये नस्मा मुतलक की तखलीक है, जिन्नात नस्मा मुफरद की तखलीक है, और इंसान नस्मा मुरक्कब की तखलीक है। तो मैंने इसकी मिसाल में आपसे अर्ज किया कि आप कपास, कपास जो है वो नस्मा मुतलक की जगह रख लें। कपास से धागा बनेगा, धागे से ताना बनेगा, ये ताना जो है, ये ताना जो है ये क्या कहलाएगा, नस्मा मुफरद, और नस्मा मुरक्कब यानी जब ताना और बाना मिल गया, इन सारी चीजों में मुफरद में मुरक्कब में क्या चीज कॉमन है? कपास, कपास का रेशा, कपास का रेशा यहां पे एक मुतलक की हैसियत रखता है, जो कि धागे की सूरत में अगर आप उसे सिंगुलर लाइनों में इस्तेमाल करें तो वो ताना कहला रहा है, उसे वीव कर लें तो वो क्रॉस सेक्शन में बाना कहलाएगा। तो ताना और बाना मिलकर मुरक्कब हो गए। तो ये मिसाल से वाजे हो गया मुतलक क्या है। खालिस चीज जिससे आगे चीजें बन रही हो उसे मुतलक कहेंगे। दूसरा मफहूम इसका ये, जिसका इतलाक होना हो, मुतलक जिसका इतलाक होता है, लागू होता है, ठीक हो गया। जी, और दूसरा सवाल क्या है?
सवाल जो ये कुन जो है इसको कहते हैं गुंजार की तरह जारी है,
जी जी
है जो क्रिएट करे, इसके बाद जितने भी मराइल हैं वो भी इसी तरह जारी सारी हैं, जैसे अलस्तु रब्बिकुम और जितने मराइल।
जी जी
ये जो फिकर है, जब एहसास फिकर की हद में काम करता है तो ये जो फिकर है ये अलीम की फिकर कहलाएगी।
अलीम कहते किसे?
यानी तनज्जुह।
अलीम किसे कहते हैं वाज़े कर लेना, जब आपके ज़हन में अलीम का सीगा वाज़े हो जाएगा। देखिए इल्म होता है, इल्म को जानने वाले को आलिम कहते हैं, ठीक हो गया। आलिम हालत को भी कहते हैं, इसी से आलिमीन है। आलिम जहां को भी कहते हैं। जरा देखें हमने एक लफ्ज में कितने मीनिंग भर दिए। सारा निजाम इल्म का है, इल्म को जानना आलिम बना देता है बंदे को। या अल्लाह को देखें ना, आलिमुल गैब व शहादा, वो जानता है कि गैब और शहूद में क्या है। ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम, यहां पे अलीम इस्तेमाल हुआ, आलम नहीं हुआ। तो आलम और अलीम में क्या फर्क है? अलीम कहते हैं जो इल्म को बरतता है, वो जो इल्म को जानता है वो आलिम है, और जो इल्म को बरत रहा है वो कौन हुआ? वो आलिम तो है क्योंकि इल्म तो उसको है, लेकिन वो इल्म को बरत रहा है इसलिए वो अलीम कहला रहा है। तो जो भी शख्स इल्म को बरत रहा है, अब एहसास क्या है, इल्म हवास क्या है, इत्तलात को जमा करने के, अखज करने के टूल्स हैं, आलात हैं, जराए हैं, हाँ या नहीं? तो गोया अलीम क्या हुआ? जो इल्म को इस्तेमाल कर रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर आप अपनी फिकर में एहसास के दर्जे तक उतर आए तो आपकी फिकर को क्या हुआ? एहसास हुआ। एहसास किस चीज को कहते हैं? महसूसात के जरिए हासिल होने वाले इल्म को एहसास ही कहेंगे ना। जो जरूरी बात इसमें है वो सबसे ज्यादा वो सुन लीजिए आज। ये आप सफा नंबर 30 पे जो कुछ पढ़ रहे हैं ये असल में सफा नंबर 20 की कंटिन्यूएशन है। सफा नंबर 20 पे क्या कहा? कुल हो अल्लाह हो अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम युलद। उसके बाद बताया कि जू के 5 दर्जे। ये सारे सूरह इखलास की तशरीह चल रही है। नई बात है?
बहुत खूबसूरत बात।
और करें, मैं नहीं कह रहा, किताब आपके हाथ में, 20वें सफे से लेकर यहां तक सब क्या है? सूरह इखलास की शरह फरमा रहे हैं हजूर कुलंदर बाबा औलिया, और ये जाविया फिकर अता कर रहे हैं कि बात को किस तरह समझना है, किस दर्जे पे समझना है। कुल हो अल्लाह हो अहद। अब इसमें क्या कहा कि वहदानियत क्या है? वहदानियत किसे कहते हैं? वहदत क्या है? यही बता रहे हैं ना। तो असल में ये अहदियत ही की शरह हो रही है या नहीं? क्यों जी? देखे ना, ये जुमला सुने जरा, समाप्त फरमाइए। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता सफा नंबर 31 के, वहदत फिक्रे इंसानी की अपनी एक इख्तरा होने की हैसियत में ज्यादा से ज्यादा फिक्रे इंसानी के अलू यानी उसकी आला दर्जे की बात, उसकी आलापन की बात, और वुस्सत को बयान करती है, यानी वहदत जो है ये फिक्रे इंसानी की एक इख्तरा है, जो फिक्रे इंसानी के उलू यानी उसकी बर्तरी और उसकी वुस्सत को बयान करती है। जब कोई इंसान लफ्ज वहदत इस्तेमाल करता है तो उसके मानी बस यही निकलते हैं कि वो अल्लाह ताला की यकताई को यहां तक समझे। गौर करें, यानी कि ये असल में वहदत इंसानी फहम में ना आने की चीज है, लेकिन इंसान की एक इख्तरा है। बालफाज़े दीगर लफ्ज वहदत का मफहूम इंसान की अपनी हद फिक्र तक महदूद है, और इस महदूदियत को ही इंसान ला महदूदियत का नाम दे देता है। साफ लिखा हुआ है या नहीं? फिल वाक्या अल्लाह ताला इस किस्म की तौसीफी हदों से बहुत अरफा और आला है। जब हम वहदत कहते हैं तो फिल हकीकत अपनी ही वहदत फिक्र का तज़करा करते हैं। कोई कसर छोड़ी उन्होंने? आपको अंदाजा हुआ कि वो आपके जहन को, आपकी फिक्र को किस वुस्सत और बुलंदी से आशना करवा रहे हैं? और इसी मुकाम से आलम में वहदतुल वजूद, इसी मुकाम, इस बात को आपने आलम में वहदतुल वजूद कहा है, और उसके बाद आलम में वादत शहूद का आगाज होता है, यानी कि ये सब इंसानी फिक्र के ड्रामे हैं और कुछ भी नहीं। और फिर उसको बड़े सलीके से उन्होंने स्त्री कर दिया कि जब अल्लाह ने अलस्तो बे रब्बेकुम कहा तो रूहों को या अमरे रब्बी को, यहां पे लफ्ज अमरे रब्बी इस्तेमाल किया, लफ्ज रूह नहीं इस्तेमाल किया। इंसान या अमरे रब्बी की निगाह वजूद में आ जाती है, फिर वो देखता है कि मुझे किसी ने मुखातिब किया, और मुखातिब पर उसकी निगाह पड़ती है, वो कहता है बला, यानी हवास का इस्तेमाल, हवास मुंतकिल हो गए, अल्लाह ने मुंतकिल किए। ठीक है, तो बात वाजे हो गई, फिक्रे इंसानी में अलीम क्या हुआ। जब आप कहते हैं मैं हूं तो मैं क्या है? अलीम, और हूं ये इल्म है। आप अपने होने का इल्म रखते हैं, लिहाजा आप अलीम हुए, क्योंकि आप इस इल्म को बरत रहे हैं, सिर्फ जान नहीं रहे, आप चाहे जानते ना भी हो लेकिन आप बरत तो रहे। ठीक हो गया। अब हजूर कलंदर बाबौलिया ने बता दिया कि जब आप को ये हवास अता हो गए तो आपकी फिक्र एक और तनज़ल में चली गई, और आपने देखा कि मेरे अलावा और मखलूक भी है। यहां से आपको शहूद हासिल हुआ, आलम वहदत शहूद कहा। पहला तनज़ल महज इदराक था, जब एहसास में गहराई हासिल हुई तो निगाह वजूद में आई, और निगाह इदराक की गहराई का दूसरा नाम है। निगाह की ये डेफिनेशन आपको अजबर रहनी चाहिए, इस किताब के आखिर तक ये जुमला आपको हिफ्ज याद हो जाना चाहिए। क्या निगाह असल में क्या चीज है? इदराक। की गहराई का नाम इद्रा का दूसरा नाम है। निगाह इद्राक की गहराई को कहते हैं। फिर आगे उन्होंने कानून बताया और आगे पूरी उसकी शरह कर दी कि किस तरह से इद्राक गहरा होने के बाद निगाह बनता है। निगाह जो है वो जब और गहरी होती है तो वो ख्याल की हदों से निकलकर हदो खाल की सूरत में सामने आती है, फिर उसी को मुशाहिदा और शहूद कहते हैं। एक एक चीज की वजाहत हजूर खिलंदर बाब औलिया ने कर दी इसमें। ठीक हो गया जी? जी कोई सवाल? ये बात वाजे हो गई कि नहीं?
ये अल्लाह ताला की सिफात जो लोग अल्लाह ये जब हम कहते हैं ये एहसास तक पहुंचने अल्लाह की वादानियत समझे ये एहसास मेरा अपना एहसास ये होगा ये अल्लाह ताला की फिर वादानियत यानी मेरी अपनी फिक्र की पहुंच मैंने उसको कैसे महसूस।
हाँ जी बिल्कुल ऐसे। देखें सिफात जो है वो अल्लाह की है, इंसानों के अंदर मखलूक के अंदर ये सिफात जो हैं सलाहियतें कहलाती हैं। निगाह भी एक सलाहियत है, समात भी एक सलाहियत है, नुत्क और गोयाई भी एक सलाहियत है, जायका और शामा भी एक सलाहियत है या एक एक सलाहियत है, इसी तरह लम्स भी एक सलाहियत है। लेकिन ये असल में क्या है? ये सलाहियतें अल्लाह की सिफात है। हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपनी सलाहियतों को अपनी सलाहियतें मानने बैठ जाते हैं जो कि गलत है। सलाहियतें हमारी क्या हैं? ये अल्लाह की सिफात का अक्स है। तो जब आपको अपनी सलाहियतों का इरफान हासिल होगा तो असल में आप क्या जान रहे हैं? आप अल्लाह की सिफात को समझ रहे हैं। और अल्लाह की सिफात को जानने वाले को क्या कहते हैं? आरिफ ही तो कहते हैं। जी और किसी ने कोई सवाल पूछने?
ये जो लफ्ज है अलस्तु बिरब्बिकुम ये कुरान में एक ही बार आया है सूरह आराफ में।
जी
यानी कहीं और मैंने भी एक ही वो आया जो 172।
जी जी इसका असल मतलब क्या है? अलस्तो क्या नहीं है बेरब्बेकुम, ये सारा निजाम तुम्हारे रब के साथ क्या नहीं है ये सारा साथ तुम्हारे रब के, यानी क्या ये सारा निजाम अल्लाह की सिफत रबूबियत के साथ नहीं जुड़ा हुआ? क्या ये सारा निजाम अल्लाह की सिफत रबूबियत पे बेस्ड नहीं है? अल्लाह तो क्या नहीं है? अल्लाह ने सवाल पूछा और अजर्शन के साथ पूछा, अल्लाह तो बे रब्बे कुम क्या तुम्हारे रब के साथ नहीं है ये सारा निजाम? यानी अगर रब नहीं है तो निजाम भी नहीं है। अगर ये सारा निजाम तुम्हारे अपने होने का, जो तुम्हें एहसास हो रहा है तुम्हारा होना जो है, क्या ये सारा अल्लाह की सिफत रबूबियत के साथ नहीं जुड़ा हुआ? आगे से आपने क्या कहा? जाहिर है आपने इस पर गौर किया, इस पर तफक्कुर किया, इस पर इसको समझा, फिर आपने तस्दीक में क्या कहा? कालू, कहा। कालू यानी कहा, यानी कहने से पहले सारे मराहिल गौर व फिक्र के इसी कहने में आ गए। क्या कहा? भला क्यों नहीं, भला नाम नहीं कहा, यस नहीं कहा आपने। अलस्तो बे रब्बिकुम का जवाब क्या फरमाया? भला बेशक क्यों नहीं, ऐसा ही तो है। और इस एक्नॉलेजमेंट के बाद आज क्या कह रहे हैं हम कि सारा निजाम तो मेरे जोरे बाजू से चल रहा है, तो ये क्या बदहदी ना हुई? इसीलिए तो कहा ना कि हमने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए दिखाया, शाहिद ना, कि आप ये मुशाहिदा हासिल हो जाए ताकि कल को तुम मुनकर ना हो जाओ। गौर करें, उस आयत में ये वाजे बताया कि ये क्यों दिखाया और क्यों कहा है या नहीं, आखिरी अल्फाज उस आयत के, ताकि तुम मुनकर ना हो जाओ, ताकि तुम कल को ये ना कहो कि हमें नहीं पता था। और करें, अब ये वाक्या कब का है? जाहिर है ये करोड़ों अरबों खरबों साल पहले की बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अरबों खरबों साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें शऊर सिर्फ अपने ये 150 साल का है। क्या रेशियो है 150 साल को सारी ड्यूरेशन से, जब अल्लाह ने कुन कहा और फिर अलस्तु बिरब्बिकुम कहा, फिर आपने कालू बला कहा, फिर अल्लाह ने आपकी रूह को पकड़ा, व नफख्तु फीहि मिन रूही, उसमें अपनी रूह में से कुछ सलाहियतें एक्स्ट्रा फूंकी जो दीगर मखलूक को नहीं हासिल थी, फिर आपसे कहा कि भी फिर इल्मुल अस्मा अता किया, यानी इन सलाहियतों के इस्तेमाल का इल्म सिखाया, फिर कहा कि भी इसका डिस्प्ले करो, डिमॉन्स्ट्रेट करो, आपने किया, तो अल्लाह ने कायनात को हुक्म दिया कि इसके सामने सजदा रेज हो जाओ। सबने सजदा किया सिवाय एक ने, उसके साथ अल्लाह का मकालमा अलग, उसको अल्लाह ने मर्दूद करार दिया और आदम से कहा जन्नत में रहो, या आदम अस्कनल जन्ना वान तजौजो का, जन्नत में रहो यानी सकून हासिल करो, खुशी में, अस्कन सकून, जन्नत खुशी यानी खुशी और सकून में रहो, वान तजौजो का और अपने जौज के हमरा, ये हमरा पता नहीं हमने कैसे कर दिया, लेकिन वहां पे अंता जौजो का और तुम, तुम्हारे जौज। फिर कहा कि भी जन्नत में रखा, फिर हुक्म दिया कि दरख्त के करीब नहीं जाना वहां से, और साथ में मना किया कि देखो शैतान से होशियार रहना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसके बाद आपने बगावत की, आपने अल्लाह की सरताबी की, नाफरमानी की, अल्लाह ने कहा नीचे उतर जाओ। ये मतान इलाहीन ये थोड़ी सी मुद्दत है, इसमें अगर तुमने अपने शैतान को डिफीट कर दिया तो वापस आ जाना, अदरवाइज गो टू हेल। सो वी आर हेडिंग फॉर द हेल, क्योंकि हम शैतान को शिकस्त देने पे आमादे ही नहीं है, हम तो उसके साथ ही बने हुए, उसके बाकुवते बाजू, उसके बाजुओं की ताकत बने हुए। जी
सलाम अलैकुम सर।
जी वालेकुम सलाम।
तो ये कायद बार बार सुन में कुछ वो दिया बरफान वाला का जिक्र।
जी जी
सर, करें, किस तरह करेंगे?
कैसे करूंगा, मुझे मैं कौन होता हूँ एक्सप्लेन करने वाला? वहाँ पे इसके मफहूम को आप गौर करें, साफ लिखा हुआ है, वरफाना लका जिक्रक, जिक्रक तुम्हारा जिक्र ऊपर हो जाएगा अगर तुम अल्लाह के निजाम पे चलोगे तो, यानी यू विल बी रिमेम्बर्ड इन ए बेटर वर्ड्स। रफाना हमने बुलंद कर दिया तुम्हारा जिक्र, ये लफ्जी तर्जमा है। रफाना ना का सीगा जमा का, यानी अल्लाह का सिस्टम उस बंदे को, जिक्र कहते किसे, मेंशनिंग को, याददाश्त को, आपका जो जिक्र है यानी आपका जो चेहरा मुबारक है या आपका किरदार जो है, आपका रोल जो है, आपने जैसा अदा किया अपनी जिंदगी में, वो जिक्र जो है लोगों के जहनों में आला रुतबे पे होगा, अल्लाह ने उसे ऊंचा कर दिया, बशर्ते के आप अल्लाह के मुताबिक चलें तो सही। हमने मखसूस कर दिया कि ये आयत सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम के लिए, बिल्कुल पहले उन्हीं को कहा गया, लेकिन उनके हर उम्मती पे भी तो लागू होती है ना, उनके हर उस उम्मती पे लागू होगी जो हजूर अलैहिस्सलाम की तर्ज फिक्र पे गामजन होकर अल्लाह के कहे पे चलेगा, हाँ या नहीं? काफी हो गया जी, मेरा ख्याल है और कोई सवाल नहीं है किसी के पास।
ये सिर्फ ये पूछना था, ये अंत जोजुका, ये जमा का सीखी
है? नहीं नहीं, अंत जोजुका तुम्हारा का जो है तुम्हारे लिए, तुम्हारा जोज, जोज अंग्रेजी में स्पाउस को कहते हैं, मेल के लिए उसकी वाइफ बीवी और बीवी के लिए उसका शौहर स्पाउस कहलाता है कि नहीं? इसी तरह अरबी का लफ्ज ज़ौज जो है औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत, यानी जोड़ा, ज़ौज का लफ्जी मतलब है तो अपने जोड़े के साथ। जी हाँ, उसके दोनों रुख थे जो कि जन्नत में दाखले के वक्त दो हो गए, अलग हो गए, आमने सामने आ गए, क्योंकि उससे पहले तो कहीं जिक्र नहीं है।
ये जब आमने सामने आए दोनों रुख, तो ये अपोजिट उसमें जेंडर में हुए या फिर एक आदम उसी का रिफ्लेक्शन दूसरा?
नहीं नहीं, जाहिर है जेंडर्स आ गए ना यहाँ पे, क्योंकि अपनी जगह देखें दोनों दोहरे हैं, ज़ौजैन असनैन दोहरे, हर औरत के अंदर भी मर्द है, मर्द के अंदर भी औरत है, उधर वो बाहर ज़ाहरी तौर पे एक दूसरे के लिए जरूरी भी हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल सही। देखें बच्चे की मिसाल रखें तो ये वही कैफियतें जो आलम अरवा में गुजरी, वही उन्हीं की रिफ्लेक्शन हमें या मादी जोन में भी नजर आती है। एक दिन के बच्चे का शऊर बिल्कुल वही है जैसे आपकी रूहें पहले दिन पैदा हुई, रफ्ता रफ्ता उसको ये शऊर आना शुरू हुआ, समात बेदार हुई, पहले उसकी समात बेदार होती है, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी आंख काम करने लगती है, फिर उसे समझ आती है ये मेरी अम्मा है, ये मेरा अब्बा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, हाँ या नहीं। उसको पहले सिर्फ अपने होने का एहसास होता है, गुमशुदगी का एहसास है, बस मैं हूं, क्या हूं, क्यों हूं, कहां हूं, कोई पता नहीं होता। रफ्ता रफ्ता अब यही मिसाल आप ऊपर के जोन में रूह की पैदाइश के वक्त की लगा ले, ठीक हो गया।
अल्लाह ने मतलब इसका भी हमने बताया कि पहले दिन का बच्चा जो है वो जो जो रूह आलमे गुमशुदगी में थी उसका यानी कि ये मिसाल कहने या
जी जी मतलब है हर आलम में आप पे असर नौ वही कैफियत गुजर रही है कि नहीं। देखें जब आप पिछले आलमीन गुजर के यहाँ आए तो जब दुनिया में आए तो पिछले सारे आलमीन आप भूले हुए हैं, इसीलिए तो इंसान कहला रहे हैं। अब यहाँ पे आपको असर नौ सारा शऊर हासिल करना है, अगर ये कर लिया तो अब ये शऊर आगे कैरी करेगा आपके साथ, वरना सब मिट्टी हो गया। ये आपने बहुत अच्छी बात फरमाई के बच्चे को, इसीलिए देखे ना रूहानियत के बारे में अब्बा ने क्या फरमाया, हजूर मुर्शिदे करीम ने कहा कि भी रूहानियत बचपन की तरफ के सफर का दूसरा नाम है, यानी आपको शौरी तौर पे वो छोटा बच्चा बनना है जिसके अंदर सिवाय अल्लाह के होता ही कुछ नहीं है। ठीक हो गया। चले खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। आपका शुक्रिया कि आप माशाल्लाह इस कदर ज़ौक़ो शौक से इतनी दिलचस्पी लेके इस किताब में इन्हमाक हासिल कर रहे हैं। आपने नोट किया कि ये किताब हरगिज़ इतनी दुश्वार नहीं है जितनी इसके बारे में प्रोपोगंडा किया गया था, ये बड़ी मुश्किल है। यानी देखे ना बात है सारा दिलचस्पी लेने की, जब आपने दिलचस्पी ली तो सारी मुश्किलात अल्लाह हल कर रहा है। चलें ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।